नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पहली जुलाई से ये प्रतिबंध हट जाएंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थी, इस वजह से 12 जून से अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य कालाबाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसीलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। केंद्र सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियमन भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। ये नीति कल से चरणबद्ध ढंग से लागू होगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को शून्य उत्सर्जन परिवहन की दिशा में आगे बढ़ाना और प्रदूषण कम करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार अगले 4 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत जबकि 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया है। दोनों टीमें निर्धारित समय पर एक एक गोल की बराबरी पर थीं। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। इसके साथ ही पैराग्वे राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर गई है, जबकि जर्मनी विश्व कप से बाहर हो गई है। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। ब्राजील ने रोमांचक मुकाबले में जापान को 2-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।